जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Rama Hare Hare Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shyam Sundar. Radha Shyam Sundar Radhe Jai Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Shtotar Sat His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय श्री श्री कृष्ण बलराम की जाय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जाय श्री श्री गौर निताय की जाय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जाय समवेत भक्त वृंद की जाय समवेत भक्त वृंद की जाय श्री श्री गुरु गौरांग की जाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दसवां अध्याय भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है श्लोक संख्या 49 और 50 क्षत्तुः कौशारभेः तस्य संवादः अध्यात्म संश्रितः यत् वा सः भगवान् त तस्मै पृष्ठः तत्त्वम् उवाच ह ब्रूहि नः तत् इदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्याग निमित्तं च यथा एव आगतवान् पुनः क्षु नहीं क्ष होना चाहिए वो ऊ काट दीजिए क्षत्रु कौशार्वेस्तस्य संवादोध्यात्म संश्रितः यद्वा स भगवंस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वम् उवाचः पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः क्षत्रुः कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः चतुः कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वम् उवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः क्षत्रुः कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः क्षत्रुः कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवा गतवान् पुनः माताजी चतुः कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यदा तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुस्त्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः क्षत्तुः कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वम् उवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवा गतवान् पुनः चार्वेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च क्षत्तुः विदुर्की कौशारवेः मैत्रेयकी तस्य उनका संवादः समाचार अध्यात्म दिव्य ज्ञान के विषय संश्रितः से पूरित यत जो वा अन्य कुछ सह वह भगवान भगवान तस्मै उससे पृष्टः पूछा तत्त्वं सत्य उवाच उत्तर दिया ह पुराकाल में ब्रूहि कृपया कहें नह हमसे तत् वे विषय इदम् यहां सौम्य हे सौम्य विदुरस्य विदुर का विचेष्टितम् कार्यकलाप बंधुत्याग मित्रों के परित्याग का निमित्तम् कारण च भी यथा जिस प्रकार एव भी आगतवान वापस आया पुनः फिर से अनुवाद और तात्पर्य भी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद शौनक ऋषि ने कहा आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच कौन सी अध्यात्म चर्चा हुई विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेयन ने क्या उत्तर दिया था कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं तात्पर्य श्री सूत गोस्वामी संसार की सृष्टि तथा संहार की कथाएं सुना रहे थे किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शौनक आदि ऋषि अध्यात्म विषयों को जो भौतिक विषयों से ऊंचे स्तर पर हैं सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे मनुष्य दो प्रकार के होते हैं एक तो वे जो स्थूल देह तथा भौतिक संसार में अधिक लिप्त रहते हैं और दूसरे वे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। श्रीमद् भागवत प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वह भौतिकवादी हो अथवा गुणातीतवादी अध्यात्मवादी हो, सुविधा प्रदान करने वाला है। लोग भगवान से भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में भगवान के महिमा मंडित कार्यकलापों को सुनकर समान लाभ उठा सकते हैं। भौतिकवादी भौतिक नियमों एवं उनकी कार्यविधि में अधिक रुचि रखते हैं। वे भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य देखते हैं। कभी कभी इसी चकाचौंध में वे भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य भगवान द्वारा ही प्रेरित हैं। उद्यान में गुलाब का फूल धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुंदर तथा सुरभित बनता है। वह किसी अंधाधुंध भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता, यद्यपि प्रतीत ऐसा ही होता है। इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है, अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती। कलाकार संपूर्ण मनोयोग और कलात्मक अनुभूति से गुलाब का चित्र बनाता है, किंतु जो भी वह असली गुलाब की तरह पूर्ण नहीं होता। यदि यह सत्य है तो हम यह किस तरह कह सकते हैं कि असली गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया? अल्पज्ञता के कारण ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सृष्टि तथा संहार के उपर्युक्त वर्णन से हम यह समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने से परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है। कोरे भौतिकवादियों से भी बढ़कर मूर्ख व्यक्ति अपने को गुणातीतवादी अध्यात्मवादी कहते हैं और अपने को अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवाल के उस पार क्या हो रहा है, फिर भी वह परम पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने को समन्वित होने का झूठा गर्व करते हैं। ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवत का सुनना सहायक बनता है। इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से ही कोई परम भावना से भावित नहीं हो जाता। इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है। किंतु नैमिषारण्य के ऋषि कोरे भौतिकवादियों तथा झूठे आध्यात्मवादियों से ऊपर थे, अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषयों का की वास्तविक सत्यता जानने के लिए सदैव इच्छुक थे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिचन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम दूसरे स्कंद के अंत में प्राय पहुंच चुके हैं। इस अध्याय में हम सुन चुके हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया है संक्षिप्त में, जिन 10 विषयों के ऊपर सारा भागवत आधारित है इसकी चर्चा हुई है। परंतु अधिकतर शुकदेव गोस्वामी ने भौतिक सृष्टि का निर्माण कैसे होता है विराट रूप के द्वारा इसका वर्णन भी किया है। वैसे ये सब तो सुन चुके हैं सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषिगण, और वो अब याद कर रहे हैं कि प्राय 15-16 अध्याय पूर्व शुकदेव गोस्वामी ने विदुर जी के बारे में एक बात कही थी पहले स्कंद के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में, विदुरस तीर्थ यात्रायाम मैत्रीयाद आत्मनो गतिम ज्ञात्वा गाधास्तिनापुरम तया वाक्त विवित्सितः। शुकदेव गोस्वामी ने उस 13वें अध्याय को शुरू किया था इस श्लोक के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा विदुरस तीर्थ यात्रायाम, विदुर जी जब तीर्थ यात्रा में गए थे तो उस समय मैत्रेयाद मैत्रेय से उन्होंने जान लिया आत्मनो गतिम ज्ञात्वा, आत्मा की गति या आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। और आगाध हस्तिनापुरम, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो पुनः हस्तिनापुर लौट गए थे। तया वाप्त विवित्सितः, और ऐसे ज्ञान से पूरी तरह से वो संतुष्ट हो गए थे। जो भी उपयुक्त ज्ञान था, उचित ज्ञान था प्राप्त करने के लिए, वो विदुर ने प्राप्त कर लिया था। तो इस घटना के बाद, इस श्लोक के बाद शुकदेव जी ने ये नहीं बताया उस समय कि विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से क्या ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि आगाध हस्तिनापुरम लिखा था कि अब हस्तिनापुर लौट गए, तो वहां हस्तिनापुर लौटने के बाद क्या हुआ इस विषय का वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने शुरू किया, और विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से क्या सुनी, क्या ज्ञान प्राप्त किया, वो विषय रह गया था। तो जब विदुर जी हस्तिनापुर लौट के आए तो उस समय कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव विजयी हो गए थे, युधिष्ठिर महाराज विश्व सम्राट बन गए थे, उधर द्वारका में यदुवंश का नाश हो गया था, श्री कृष्ण का तिरुभाव हो चुका था, श्री कृष्ण स्वधाम लौट गए थे। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते उद्धव जी से मिले थे, उद्धव जी से जब मिले तो उस समय उनको पता था कि ये प्रभास क्षेत्र में क्या हुआ है, यदुकुल के सदस्यों ने आपस में मिलकर एक दूसरे का की हत्या की थी, परंतु फिर भी ऐसे पेश आए उद्धव जी के सामने कि जैसे उनको पता नहीं था। उद्धव जी से सारी जानकारी प्राप्त की, और उद्धव जी से जब ज्ञान प्राप्त करना चाहा तो उद्धव जी ने ठीक नहीं समझा, क्योंकि विदुर जी उद्धव के लिए पिता तुल्य थे और उन्होंने कहा कि पास में ही मैत्री मुनि बैठे हैं तो वहां जाकर आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। अब मैत्री मुनि ये पराशर ऋषि के शिष्य थे, पराशर मुनि से उन्होंने विष्णु पुराण सीखा था, इस तरह से वो वेद व्यास जी के हम उम्र के थे, समकालीन थे और मित्र भी थे। तो वेद व्यास जी और मैत्र मुनि बुजुर्ग थे और उद्धव उस तुलना में कम उम्र के थे और विदुर जी भी पिता तुल्य थे, इसलिए उद्धव ने समझा कि मैं इनका गुरु तो नहीं बन सकता, ये ऐसे करने से मर्यादा व्यतिक्रमण होगा। जब निकट ही एक वरिष्ठ संत बैठे हैं मैत्री मुनि तो उनके पास मुझे विदुर को भेजना ये उचित रहेगा, तो उन्होंने ऐसे किया। और विदुर जी मैत्री मुनि को ढूंढते ढूंढते हरिद्वार तक पहुंचे, गंगा जी के तट पर, और वहां पे उन्होंने मैत्री मुनि से अनेक प्रश्न किए जो सारा तीसरा और चौथा स्कंद है श्रीमद् भागवत का, वो इस संवाद पर आधारित है जो कि मैत्री मुनि और विदुर के बीच में हुआ था हरिद्वार में उस समय। तो खैर इस संवाद को समाप्त करके जब पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके थे विदुर जी तो वो हस्तिनापुर आ गए, क्योंकि उनको चिंता थी अपने बड़े भाई की, अपनी चिंता निजी चिंता तो नहीं थी और न ही उनको इतनी ज्यादा चिंता पांडवों की थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये पांडव तो धर्मपरायण हैं और श्री कृष्ण के आदेश का पालन अवश्य करेंगे। परंतु उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र की बड़ी चिंता थी उनको, इसलिए वो लौट कर आए। जब आए तो सारे पांडवों ने और जितने भी कुरुवंश के अन्य सदस्य थे उन सबों ने मिलकर बहुत ही हार्दिक स्वागत किया विदुर जी का और भूरी भूरी प्रशंसा की। यहां तक युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी से कहा, भवद विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन कदाव्रता। वो कहने लगे कि हे विदुर जी, आप जैसे भागवत या आप जैसे चलते फिरते भागवत, भागवत तो दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो पुस्तक भागवत और दूसरे जो व्यक्ति भागवत होते हैं, जो चलते फिरते भागवत होते हैं, जिन्होंने भागवत के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा हुआ होता है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भवत विधा भागवता, कि आप जैसे जो महान भक्त होते हैं तीर्थ भूताः स्वयं विभो, आप मूर्तिमान तीर्थ स्थान हैं, आप स्वयं मूर्तिमान तीर्थ ही हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, बल्कि आप ही तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थान बनाते हैं, आपकी वजह से ही तीर्थ स्थान हो जाता है। क्यों? स्व अंतःस्थेन गदाभृत, क्योंकि आपके अंतःकरण में गदा धारण करने वाले गदाधर श्री कृष्ण विराजमान हैं। विदुर जी तो बहुत महान भक्त थे, बहुत ही बुद्धिमान थे और पांडवों को उन्होंने अनेक कठिनाइयों से बचाया था। शुरुआत में ही जब पांडव युवक थे और जब दुर्योधन ने षड्यंत्र रचाया था उनको वर्णावत में लाकर लक्षाग्रह में जलाने की कोशिश की थी, तो गोपनीय संदेश के द्वारा विदुर जी ने उनको चेतावनी दी थी और इस चेतावनी की वजह से पांडव जो है अपने आप को बचा पाए थे। पांडवों के शुभचिंतक थे वो, और वैसे कौरवों के शुभचिंतक भी थे, परंतु कौरव विशेष करके दुर्योधन उनकी बात नहीं मानते थे। दुर्योधन को भी बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया, परंतु वो नहीं मान पाते क्योंकि धृतराष्ट्र की आसक्ति उनके पुत्र दुर्योधन के प्रति बहुत तीव्र थी। जब धृतराष्ट्र ने देखा एक बार कि अब युद्ध होने ही वाला है, तो उन्होंने अपने सहायक संजय जी को भेजा पांडवों के पास और संदेश ये था कि हे युधिष्ठिर, आप सब वनवास में जाओ ताकि युद्ध न हो जाए और दुर्योधन को राज्य का भोग करने दो। तो संजय ने संदेश तो दे दिया, परंतु लौट कर संजय ने धृतराष्ट्र को बहुत टोका कि आप इतने लोभी हैं, आप इतने अज्ञानी हैं और आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है पांडवों के साथ, और ऐसी भर्त्सना करने के बाद संजय वहां से चले गए, परंतु धृतराष्ट्र बड़े विचलित हो गए और बेचैनी में रात भर सो नहीं पाए। और उस समय जब रात बीत गई, प्रातः काल में उन्होंने विदुर को बुलवाया कि विदुर, मेरा मन बहुत अशांत है, बहुत बेचैन हूं मैं। और उस समय विदुर जी ने महाभारत के 7 अध्यायों में उपदेश दिया धृतराष्ट्र को, और इस ये उपदेश जो है ये विदुर नीति के नाम से विख्यात है। विदुर नीति, जैसे चाणक्य की नीति है वैसे विदुर नीति भी है। बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए अनेक विषयों के ऊपर विदुर जी ने। ये 7 अध्याय उद्योग पर्व में आते हैं महाभारत के, और उद्योग पर्व का एक उप पर्व है जिसका नाम है प्रजागर पर्व। प्रजागर मतलब वो जागे रहे रात भर धृतराष्ट्र, सो नहीं पाए, इसलिए प्रजागर पर्व। और इस दौरान विदुर जी ने ये विदुर नीति सुनाई धृतराष्ट्र को। तो बहुत बुद्धिमान थे वो विदुर जी, हालांकि देखा जाए तो वर्णाश्रम की दृष्टि से वो शूद्र कहलाते थे, फिर भी बहुत बड़े भक्त थे, महाभागवत थे, बहुत बुद्धिमान थे, धर्मशास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। धृतराष्ट्र, पांडव सभी उनकी सलाह चाहते थे हमेशा। तो ऐसे भूरी भूरी प्रशंसा कर दी युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी का। विदुर जी आए, वहाँ पर सबके बीच में रहे। बातचीत करते समय विदुर जी बहुत सावधान थे, उन्होंने ये नहीं बताया पांडवों को कि श्री कृष्ण का तिरुभाव हो गया है, क्योंकि वो जानते थे कि पांडव बहुत ही दुखी हो जाएंगे, अपने प्राण को शरीर में रख नहीं पाएंगे, और वो पांडवों को दुखी देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को बताया नहीं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था धृतराष्ट्र का उद्धार करना। फिर वहां धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्होंने बहुत टोका, बहुत कटु वचन बोले, इतने कटु वचन कि कभी हमें सुन के लगता है कि विदुर जी इतने महाभागवत हैं तो ऐसे वचन क्यों बोले उन्होंने। परंतु साधु ऐसे होते हैं जो कभी कभी ऐसे तेज वचन बोलते हैं, गुरु मतलब कभी कभी भारी होना पड़ता है। तो विदुर जी धृतराष्ट्र के गुरु बने और उन्होंने धृतराष्ट्र को टोका और कहा कि जिन व्यक्तियों की हत्या करने के लिए आपने इतने षड्यंत्र रचाए, केवल अपने पुत्र के आसक्ति के कारण, अब उन्हीं के आश्रय में रह के उन्हीं के हाथ का भोजन, उन्हीं का नमक खा रहे हो, ये कितने अपमानित स्थिति है, कितनी नीच अवस्था है, और ये भी बुढ़ापे में तुम्हारा शरीर काम नहीं कर रहा है, पीठ बग गया है, कफ जम गया है, तुम पहले से अंधे तो हो ही, अब सुन भी नहीं पा रहे, बहरे भी हो गए हो, तो ऐसे अवस्था में तुम्हें यहां रहना शोभा नहीं देता, चलो मेरे साथ तुरंत वन में चलो, वानप्रस्थ स्वीकार करो। तो धृतराष्ट्र ने बात को मान ली, गांधारी भी चली गई उनके साथ में क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी, और फिर वहां धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपना जीवन सफल कर दिया। तो अगले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अर्जुन जो उस समय नहीं थे हस्तिनापुर में, वो द्वारका से लौटकर आए। युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित थे कि अर्जुन इतने समय तक लौट के क्यों नहीं आए, और जब आए तो अर्जुन बड़े उदास लग रहे थे, और पूछताछ करने पर पता ये चला कि श्री कृष्ण का तिरुभाव हो चुका है। जब परीक्षित जब महाराज युधिष्ठिर ने ये बात समझ ली तो उन्होंने ठान लिया, और उनके अन्य चार भाइयों ने भी ठान लिया, साथ साथ द्रौपदी आदि ने भी ठान लिया कि हमें भी अब वनवास में जाना है, हमें वानप्रस्थ स्वीकार करना है। और वो सब चले गए हिमालय में, परंतु इसके पहले उन्होंने राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया, और उनके वनवास जाने के पश्चात परीक्षित महाराज ने बहुत अच्छी तरह से राज्य को चलाया। किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने कली का स्वागत किया, मूर्तिमान कली को दंड दिया, इसका भी वर्णन शुकदेव सूत गोस्वामी करते हैं, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी तब तक आए नहीं थे। और फिर किस प्रकार से परीक्षित महाराज को श्राप मिला श्रृंगी के द्वारा, और उस श्राप के फलस्वरूप परीक्षित महाराज ने सब कुछ त्याग दिया और गंगा के तट पर गए वास करने के लिए, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे वो। और वहां पर भगवान की योजना से शुकदेव गोस्वामी पधारे, और उस समय परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा था कि मृत्यु के द्वार में खड़े होने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, किन विषयों के बारे में ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, किन की उपासना उसे करनी चाहिए। और फिर शुकदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद की शुरुआत से ये उत्तर प्रारंभ करते हैं। तो पहला स्कंद तो इस प्रकार निकल गया, 13वें अध्याय के बाद और 6 अध्याय इस वर्णन में निकल गए, और दूसरे अध्याय की शुरुआत में इन 10 अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी ने विशेष करके भगवान श्री कृष्ण का संबंध किस प्रकार से इस भौतिक सृष्टि के साथ होता है, इसका वर्णन संक्षेप में किया। सर्वप्रथम उन्होंने परीक्षित महाराज के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया, ये कहकर कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्, कि मृत्यु के द्वार पर खड़े होने वाले व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य ये है कि वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुने, बोले, सोचे और उनकी उपासना करे। तो मृत्यु के करीब रहने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, ये वर्णन करने के बाद शुकदेव गोस्वामी ने भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया, और फिर ये भौतिक सृष्टि का सृजन किस प्रकार से होता है, और भगवान ने कैसे ब्रह्मा जी को ये चतुःश्लोकी भागवत सुनाया। ये सारा भागवत का सार इन 4 श्लोकों में है, और फिर ये 4 श्लोकों का विस्तार जो है इन 10 लक्षणों में पाया जाता है। तो ये 10 लक्षणों का वर्णन संक्षेप में शुकदेव गोस्वामी ने इस अध्याय की शुरुआत में किए। तो ये सारा वर्णन तो हो चुका, और वर्णन के बाद अब नैमिषारण्य में एकत्र जो ऋषि हैं, जो सूत गोस्वामी इसे सारा वर्णन सुन रहे हैं, वो सोच रहे हैं भौतिक सृष्टि के बारे में हमने बहुत सुन लिया, अभी हम सुनना चाहते हैं विदुर जी के बारे में। तो जो 15 या 16 अध्याय पहले जो एक श्लोक में उल्लेख मात्र किया था सूत गोस्वामी ने, उसे याद रखा उन्होंने, और विदुर जी के बारे में सुनना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि विदुर जी बहुत ही बड़े भक्त हैं। भगवान के भक्त के बारे में सुनने में उतना ही आनंद, दिव्य आनंद आता है जितना कि भगवान के बारे में सुनने में आता है, क्योंकि दोनों शुद्ध भक्त और भगवान श्री कृष्ण दिव्य स्तर पर स्थित होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहां बतला रहे हैं इस तात्पर्य में कि जो नैमिषारण्य के ऋषिगण थे वो अब दिव्य विषयों के बारे में सुनना चाहते थे। सृष्टि से संबंधित विषयों के बारे में तो उन्होंने पर्याप्त रूप से मात्रा में सुन लिया था, अब वो कुछ और ऊंची बातें सुनना चाहते थे। तो ये जो दुनिया से संबंधित, भौतिक सृष्टि से संबंधित जो भगवान के कार्यकलाप होते हैं, ये भी लीला कहलाते हैं, सृष्टि लीला, जो भी भगवान से संबंधित है वो दिव्य है। इसलिए ये सृष्टि लीला, ये भगवान के कार्यकलाप भी दिव्य इस दृष्टि से माने जाते हैं कि वो भगवान के कार्यकलाप हैं, और इनका श्रवण पठन करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है, इस संसार के प्रति विरक्ति की भावना जागृत होती है, हमारी श्रद्धा और निष्ठा भगवान के प्रति बढ़ जाती है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। और ये सब होने का उद्देश्य ये है कि शनै शनै हम दशम स्कंद तक पहुँचे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर दिव्य लीलाओं का वर्णन है, जिन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके हम भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करके अंततः गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करें। तो ये सब तैयारी है, और ये सृष्टि लीला को भी हमें महत्व देना चाहिए, समझना चाहिए, परंतु ये भी साथ साथ जानना चाहिए कि ये अंत नहीं है, इसे आगे भी हमें जाना है और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझना है। भगवान इस भौतिक सृष्टि तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत का परिचय जब देते हैं श्रील प्रभुपाद जी, तो पहले ही वाक्य में कहते हैं कि अंग्रेजी शब्द गॉड और परम सत्य में बहुत अंतर है, क्योंकि गॉड ये अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में भगवान कहते हैं, लेकिन वास्तव में गॉड और ये भगवान सही अनुवाद नहीं है, क्योंकि भगवान शब्द गॉड से कहीं ज्यादा अधिक अर्थपूर्ण है, क्योंकि भगवान का मतलब है षड ऐश्वर्यों से जो युक्त होते हैं वो व्यक्ति, वो भगवान है। परंतु गॉड ये शब्द का अर्थ ये है कि वो नियंता है, विशेष करके इस भौतिक सृष्टि के। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं अंग्रेजी में जी ओ डी गॉड, जी मतलब जनरेटर मतलब उत्पत्ति करने वाले, ओ मतलब ऑपरेटर मतलब संचालक, और डी मतलब डिस्ट्रॉयर मतलब विनाश करने वाले। तो ये उनकी कल्पना है भगवान की। अनेक धर्मों में भगवान की कल्पना केवल इस भौतिक सृष्टि तक सीमित होती है, इसलिए वो गॉड शब्द की परिभाषा ऐसे करते हैं। ये गलत नहीं है, अवश्य भगवान नियंता हैं, परम नियंता हैं, परंतु और भी बहुत कुछ है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्सह श्रियः ज्ञानम वैराग्ययोश्चैव सन्नम भग इतिंगणा। भगवान षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं, संपूर्ण धन उनके पास है, ऐश्वर्य, वीर हैं, सबसे वीर हैं, यश सबसे ज्यादा उनका यश है, सबसे ज्यादा सौंदर्य है, परिपूर्णतया, ज्ञान और वैराग्य। तो ये छह चीजें भगवान के पास असीमित मात्रा में हैं। तो यह भौतिक सृष्टि को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, भले वो शास्त्रों के द्वारा भी क्यों ना हो, उसमें अधिकतर भगवान की शक्ति, भगवान के ज्ञान, भगवान के वैराग्य आदि का वर्णन हम सुन सकते हैं, परंतु भगवान का सौंदर्य इसके बारे में तो हम नहीं जान सकते। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान ये आनंदमय अभ्यासात है, ये वेदांत सूत्र में कहा गया है, वो दिव्य आनंद में रमण करते हैं, दिव्य आनंद के उद्गम हैं। तो ये जो आनंद का स्वरूप है भगवान का, वो सृष्टि लीला सुनने से पता नहीं चलता। यहां केवल भगवान के ज्ञान, भगवान के बल आदि का ज्ञान मिल जाता है कि भगवान कितने महान हैं। देखो महाविष्णु कारण सागर में शयन कर रहे हैं, उनके रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं केवल अपने सांस मात्र से, कितने महान हैं भगवान। परंतु भगवान कितना आनंद ले रहे हैं अपनी लीलाओं के द्वारा, इसका ज्ञान नहीं हमें मिलता। और अंततः जीव भी भगवान का अंश होने के नाते वो भी इस दिव्य आनंद का अधिकारी है। आनंदमयोभ्यासात ये श्री कृष्ण हैं, परंतु जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के नाते वो भी सच्चिदानंद हैं। तो ये दिव्य आनंद कैसे प्राप्त होगा? ये दिव्य आनंद रस के आदान प्रदान के द्वारा प्राप्त होता है। रस क्या है? ये रस वो एक दिव्य चीज है, एक भाव है भगवान श्री कृष्ण के अंदर, वो दिव्य प्रेम है जिसका आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ करके भगवान दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं। रसो वै सह, ये परिभाषा है परम सत्य की। रसराज भगवान श्री कृष्ण का नाम है, रसिक शेखर, ये सब भगवान श्री कृष्ण के भिन्न भिन्न नाम हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के शुरुआत में ही श्रील रूप गोस्वामी श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं और उनका वर्णन करते इन शब्दों से, अखिल रसामृत मूर्ति ही, अखिल रसों के अमृत की मूर्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। रसों का आस्वादन करने में वो बहुत ही निपुण हैं, प्रवीण हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, रसिक शेखर हैं वो, बल्कि रस के ही के अमृत के ही मूर्तिमान स्वरूप हैं। और विशेष करके ये दिव्य रस का आदान प्रदान वो यहां इस भौतिक सृष्टि में नहीं करते, सृष्टि के पालन में, सृष्टि के सृजन में, सृष्टि के विनाश में इस दिव्य रस का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ये कहां होता है? ये भगवान के धाम में होता है। जब श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही परम सत्य की परिभाषा होती है व्यासदेव जी द्वारा, तो व्यासदेव जी कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादस्यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेष्व अभिज्ञः स्वराट। वो कहते हैं कि ये परम सत्य है वासुदेव, जो कि जन्म आदि अर्थात न केवल जन्म परंतु पालन और विनाश भी, अस्य इन सारे भौतिक ब्रह्मांडों के उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, ये सब तो हैं, साथ साथ में वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभिज्ञ हैं, स्वराट हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उन्होंने ही ब्रह्मा जी को हृदय में स्थित होकर पूरा ज्ञान प्रदान किया है। मुह्यंति यत सूरयः, सारे जो देवता गण हैं इस भौतिक सृष्टि के अंदर वो मोहित हो जाते हैं भगवान की शक्तियों के द्वारा। जिस प्रकार से तेजो वारी मृदाम यथा, जैसे कभी अग्नि के ऊपर जल दिखाई पड़ता है या जल के भीतर भूमि दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से देवतागण भगवान की मोह माया शक्ति से मोहित हो जाते हैं। साथ साथ में वो कहते हैं, तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये भौतिक सृष्टि के अंदर जो नाम रूप है वो मिथ्या हैं, क्षणिक हैं, परंतु तीन गुणों के जो क्रियाएं हैं और प्रतिक्रियाएं हैं उनकी वजह से ये बहुत सत्य दिखाई पड़ते हैं। और फिर ये सारे भौतिक सृष्टि का वर्णन करने के बाद अंतिम वाक्य में, अंतिम लाइन में व्यासदेव जी कहते हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। अब तक इस पहले श्रीमद् भागवत के श्लोक में जितना भी वर्णन हुआ वो भौतिक सृष्टि से संबंधित हुआ परम सत्य का, परंतु अंततः वो कहते हैं कि भगवान इस भौतिक सृष्टि तक सीमित नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम, वो अपने धाम में निवास करते हैं, षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं और वहां निवास करते वो अनेक लीलाओं का आस्वादन करते हैं। निरस्त कुहकम, क्योंकि वो स्थान जो है माया से, इस मोह माया से, असत्यता से सदैव मुक्त है। तो ऐसे परम सत्य के ऊपर मैं ध्यान करता हूं। तो ये परम सत्य का विचार है। परम सत्य वो है जो न केवल सृष्टि से संबंधित है, इस भौतिक सृष्टि से, वो उस आध्यात्मिक सृष्टि से भी संबंधित है और वहां निवास करके वो रसों का आस्वादन करते हैं अपने प्रिय भक्तों के साथ में। और जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो इस प्रकार से अपने जीवन को आयोजित करते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में रहते हुए कि अंततः वो भगवान के साथ रस का आदान प्रदान करने के लिए गोलोक वृंदावन में योग्य हो जाए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नौ प्रकार के प्रमेय हैं जो प्रमाण के ऊपर आधारित जो तत्व होते हैं वो प्रमेय कहलाते हैं, और इनमें से पहले सात जो होते हैं वो संबंध तत्व से संबंधित हैं। आप तो जानते हैं कि महाप्रभु ने सिखलाया है कि सारे ज्ञान को, चाहे वो वेद हो या कोई भी शास्त्र हो, वो तीन कदमों में समझा जा सकता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये पहले सात तत्व संबंध तत्व से संबंधित हैं, आठवां अभिधेय और नौवां प्रयोजन। तो पहला ही तत्व ये है कि श्री कृष्ण या श्री हरि ही परम सत्य है, सब कुछ उन पर आधारित है। दूसरा तत्व ये है कि उनकी विभिन्न शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां जो सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। और तीसरा तत्व जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो ये है कि ये परम सत्य श्री कृष्ण जिनके अनंत शक्तियां हैं, उनके वो जो है दिव्य रसों से पूर्ण है। और ये भी संबंध ज्ञान में आता है, ये समझना कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य रसों के भंडार हैं, अखिल रसामृत मूर्ति ही। तो इस प्रकार से भगवान रसों से पूर्ण है और ऐसे रसमय लीलाओं का वो प्रदर्शन करते हैं आध्यात्मिक जगत में, ये जान लेना बहुत आवश्यक है। तो सृष्टि लीला समझने का उद्देश्य यह है कि अंततः हम उस जगत की लीलाओं को समझ लें। और ये नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषिगण अब सृष्टि लीला के आगे बढ़ना चाहते हैं, विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भगवान और भक्तों के बीच में जो संवाद है या उनके बीच में जो संबंध है, प्रेम का आदान प्रदान है, वो जान लेना चाहते हैं, क्योंकि भगवान और भक्तों का संबंध ये भी तो भक्ति का ही विषय है। भगवान और भक्तों का संवाद या दो भक्तों के बीच में संवाद, ये भी तो भगवान और भक्ति से ही संबंधित है। तो इसलिए बात को आगे बढ़ा रहे हैं ऋषिगण, और आगे चल के शुकदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में क्या संवाद हुआ। जैसे हमने पहले कहा, दो स्कंध इस संवाद के ऊपर आधारित है। शुरुआत में मैत्रेय मुनि सृष्टि के का वर्णन करते हैं विराट रूप का, विशेष करके पुनः साथ साथ में काल का क्या विभाजन है, और फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसे होती है, चतुष्कुमार आदि की सृष्टि कैसे होती है, और आगे चल के फिर भगवान वराहदेव का प्राकट्य, उधर जय और विजय को श्राप मिलना, और फिर वराहदेव द्वारा हिरण्याक्ष का वध, और फिर आगे चल के कर्दम मुनि और देवहूति की कथा, साथ में कपिल देव की शिक्षाएं, इसे तीसरा स्कंद समाप्त होता है। फिर चौथे स्कंद में कर्दम मुनि और देवहूति के जो वंशज हैं उनकी पुत्रियों के द्वारा उनका वर्णन है, ध्रुव महाराज, आगे चल के महाराज अंग, वेण, पृथु महाराज, फिर राजा प्राचीन बरही और प्रचेत आदि, राजा पुरंजन की कथा भी आती है। इस प्रकार से चौथा स्कंद भी समाप्त होता है। तो इन विषयों के बारे में मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, इसलिए यहां पर ऋषिगण यही पूछ रहे हैं, क्षत्तुः कौशारवेस्तस्य, क्षत्ता मतलब विदुर जी, कौशारवे मतलब कौशारव मैत्रेय मुनि हैं, तस्य संवादो अध्यात्म संश्रितः, तो उन दोनों के बीच में क्या आध्यात्मिक संवाद हुआ। यद वास भगवान तस्मै पृष्ठ स्तत्वम उवाचः, तो विदुर जी ने पृष्ठ क्या पूछा और मैत्रेय ने उवाच क्या कहा, क्या उत्तर दिया। ब्रूहि नह, हमसे कृपया कहिए, इदम सौम्य, हे सूत गोस्वामी कृपया आप ये सब कहिए, और साथ साथ विदुरस्य विचेष्टितम्। विदुर के जो कार्यकलाप हैं, जो आध्यात्मिक हैं, क्योंकि वो महाभागवत हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। बंधु त्याग निमित्तम च, वो अपने राज्य को, अपने घर को, अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर वनवास में चले गए, तीर्थ यात्रा में चले गए, ये क्यों हुआ, क्या कारण था इसका, इसके बारे में भी बताइए। और साथ साथ में यथा एव आगतान पुनः, फिर से वो वापस लौट के घर क्यों आए, इसकी भी जानकारी हम सबको दीजिए। तो आगे चल के तीसरे स्कंद में ये जानकारी हम पाएंगे। केवल एक श्लोक बचा है, इसकी चर्चा कल होगी और फिर तीसरा स्कंद प्रारंभ होगा। हरे कृष्णा। तो कोई टीका टिप्पणी प्रश्न, महाराज को टीका करना चाहते हैं?
प्रभु जी एक प्रश्न था।
एक मिनट, महाराज कुछ कहना चाहते हैं।
दूसरे स्कंध में ये सृष्टि का वर्णन काफी हो चुका है, और फिर सोनकादि ऋषि कुछ हायर टॉपिक सुनना चाहते थे। हम देखते हैं कि तीसरे स्कंध में फिर वही सृष्टि की बातें चालू, बहुत विस्तार से होने।
हाँ, ये भी हम ही सोच रहे थे, ये सही है, परंतु इसका कारण ये है कि ऋषियों ने पूछा था कि मैत्रेय और विदुर के बीच में संवाद क्या हुआ। तो विदुर जी ने संवाद इन प्रश्नों से शुरुआत किया था जो कि सृष्टि से संबंधित हैं, इसलिए मैत्रेय जी ने उत्तर दिया। और क्योंकि ये संवाद इस प्रकार से हुआ था तो सुत गोस्वामी को जैसे था वैसे कहना पड़ा। और सृष्टि की बातें काफी चलती हैं आगे, फिर काल, काल के विभाजन, अणु से लेकर ब्रह्मांड तक काफी गहराई में सूत गोस्वामी फिर वर्णन करते हैं। हाँ जी, क्या प्रश्न? माइक पीछे लेंगे।
प्रभु जी, जैसे भगवद गीता में वर्णाश्रम के बारे में कहा गया कि गुण और कर्म के हिसाब से वर्ण गिना जाता है, तो हालांकि विदुर जी बड़े महान भक्त थे और ब्राह्मणी गुणों से संपन्न थे, तो उनको कैसे शास्त्रों में, भागवतम में उनको शूद्र से पुकारा जाता है, शूद्र नाम से?
सभी लोग जानते थे कि विदुर के गुण क्या है। देखिए, अगर वास्तव में कोई शूद्र है तो क्या कोई व्यक्ति उस शूद्र को बुलाकर उनसे उपदेश ग्रहण करेंगे, उनको बुलाएंगे कि हमें कुछ समझाइए, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की विदुर की। युधिष्ठिर महाराज तो शास्त्रज्ञ थे, धृतराष्ट्र भी बहुत कुछ जानते थे, केवल उनकी कमजोरी थी कि वो आसक्ति थी पुत्र के प्रति। और सभी लोग जानते थे कि विदुर कितने ज्ञानी हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने महान भक्त हैं, और उसी प्रकार का सम्मान वो विदुर जी को देते थे। हालांकि विदुर जी का जन्म एक शूद्राणी के द्वारा हुआ, दासी थी वो, अंबिका की दासी थी। अंबिका थी धृतराष्ट्र की माता, और व्यासदेव जी ने संतान की उत्पत्ति की इस दासी के माध्यम से, इसलिए वो राजपुत्र नहीं थे। जो रानियां थी उनके द्वारा उत्पन्न नहीं हुए थे, इसलिए उनको जो राज्य की संपत्ति थी उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन भीष्म देव ने विदुर को सारी अच्छी व्यवस्था करके दे दी, बहुत बढ़िया सम्मान किया, धृतराष्ट्र ने भी उनके लिए संपत्ति अलग से रख दी। तो किसी साधारण शूद्र के साथ तो ऐसे नहीं होता, केवल जन्म मात्र से, क्योंकि उनकी माता एक शूद्राणी थी इसलिए कहा जाता है, लेकिन गुण से वो तो परम वैष्णव थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न या टीका? ठीक है, हाँ जी सुनाई नहीं दे रहा है, एक मिनट आप प्रश्न माइक दीजिए उनको।
जीओडी गॉड, गॉड एर आर एक बार ब्लिसेशन जे किया है ऑपरेटर आज जी की एक बार बोलो ना।
जीओडी क्या है ये प्रश्न है? ऐसे कई लोग कहते हैं जी मतलब जनरेटर, जनरेट मतलब उत्पत्ति करता, ओ मतलब ऑपरेटर मतलब संचालक चलाने वाले, और डी मतलब डिस्ट्रॉयर विनाश करने वाले। कहने का तात्पर्य यह था कि ऐसे कई लोग होते हैं जो भगवान को केवल भौतिक सृष्टि से ही सीमित कर देते हैं, सोचते हैं कि भौतिक सृष्टि ही सब कुछ है और भगवान वो है, उनका एक ही काम है सृष्टि को चलाना। परंतु भगवान को सृष्टि चलाने से अलावा बहुत कुछ और काम है, ये इनका असली काम नहीं है। उनका असली काम है अपने धाम में रह के लीला करना भक्तों के साथ में, इसलिए अपने विस्तारों के द्वारा अपने अनंत शक्तियों के द्वारा भौतिक सृष्टि का काम चला लेते हैं। स्वयं नहीं करते भगवान, प्रत्यक्ष रूप से भगवान इस सृष्टि से संबंधित नहीं है, परंतु केवल उन व्यक्तियों को श्रद्धा दिलाने के लिए, ज्ञान दिलाने के लिए कि ये भौतिक सृष्टि स्वयं ही नहीं आई है, इसके पीछे भी एक भगवान है, ये जानकारी दिलाने के लिए ऐसे बतलाया जाता है कि किस प्रकार से भगवान प्रत्यक्ष रूप से इस सृष्टि से संबंधित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।